कक्षा गुरु हैं और तकरीबन 4 दिन से महाराज का हमें सत्संग मिल रहा है और जब तक प्रभु महाराज कल जा रहे हैं।
हाँ कल
तो महाराज कल हमसे विदा ले रहे हैं और वापस 17 तारीख को आएंगे और आप में से काफ़ी भक्तजनों ने इस सत्संग का लाभ उठाया है और महाराज का परिसर आप सब जान चुके हैं और हमारे सबके ये हो भाग्य है। खास तौर से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जैसे इस घर के अंदर बहुत से संत आ चुके हैं और हमें कल्पना भी ऐसी नहीं थी कि नाहन महाराज का हमें इस तरह सत्संग मिलेगा और हमारे घर में उनकी बधाई होगी, तो हमें सत्संग में कभी सोचा भी नहीं था। मैं जब महाराज से देख रहा हूँ तो ऐसा बात होता है जैसे मैं प्रभुपाद स्वामी को ही देख रहा हूँ, क्योंकि आज तक प्रभुपाद स्वामी की किताबें पढ़कर जो कुछ ज्ञान मिला है वो ज्ञान से दिमाग के अंदर एक ऐसी छवि छा गई है। तो आज ऐसा भाव लग रहा है महाराज को 4 दिन से देखने से हम स्वयं प्रभुपाद स्वामी के दर्शन कर रहे हैं। और ऐसे ही प्रभुपाद स्वामी और नाम महाराज के बीच में हमें तो कोई भेद लगता ही नहीं है। जैसे प्रभुपाद स्वामी चले गए और उनकी दूसरी तस्वीर महाराज के अंदर रख के छोड़ गए, बस यही हमारा सौभाग्य है। महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ मृत चला में कहें। हरे कृष्णा।
And at that time, I didn't know that just a year earlier, back in Vrindavan, he and Chiru Narayan Maharaj were actually jointly together in meetings planning the ISKCON movement as it manifested itself in Chiru Prabhupada's time. They would sit together in the Radha Damodar temple, cook chapatis together. That's when Prabhupada was not famous. Many of us come to Prabhupada because we hear how great he is. But at that time, he was very poor and no one knew of him. He was going back and forth to Delhi, printing his first canto, Srimad Bhagavatam. And at that time, Chiru Narayan Maharaj was serving him and sent him off to America after their years of association since 1946. That is, for the last 50 years, Chiru Narayan Maharaj has been serving Srila Prabhupada as his senior Shishya disciple. So when I was in 26 Second Avenue, I didn't know also that my oldest godbrother was Chiru Narayan Maharaj. We know from the list in Prabhupada's Bhagavad Gita, from Brahma to Narada to Vyas to Madhva, that our line is not a soli diksha line. It is a shiksha diksha line. For example, Srila Bhaktivinoda Thakur did not take formal diksha from Jagannath Das Babaji Maharaj. And yet, in Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada writes that he took initiation. So initiation is something more or different than the formal ceremony of simply saying swaha and putting some grains into the fire. The real meaning of initiation is one who fully surrenders to the mood and siddhanta of the predecessor spiritual master. So just as there's no difference between the Shiksha and Diksha Guru, because as Srila Krishnadas Kaviraj Goswami says in the Chaitanya Charitamrita Adi Lila chapter 1, they are both manifestations of Krishna for delivering the disciple back to Godhead. Similarly, conversely, there's no difference between the bona fide Shiksha and Diksha disciple. Therefore, because Srila Narayan Maharaj exactly, and you can take it from me by personal experience, because I've been hearing Prabhupada since 1966 for 30 years, and because although I actually never liked to paint, most of you know me as an artist, but I actually never liked it, Prabhupada forced me to do it. But in retrospect, I'm so happy that it happened, because for 10, 12, and on marathon times, like when we did the Chaitanya Charitamrita Marathon in 1975, producing the Prabhupada 17 volumes of Chaitanya Charitamrita, during the Krishna Book Marathon, Bhagavad Gita Marathon, when we were painting for 16 hours daily, what kept me happy was listening to Prabhupada's tape. So hearing him so much, I can tell you from personal experience, there's not an iota of difference between the words of Srila Narayana Maharaj and Srila Prabhupada. And actually, rather, he puts a very strong light on Srila Prabhupada so that we can see his meanings better. This is the meaning of the Siddhic succession, that the next disciple, the next acharya, illuminates the previous acharya. We say, well, we only need Srila Prabhupada's books, but we see that Vyasadeva put everything in the Srimad Bhagavatam. He was lamenting because he's thinking, I've written all the Vedas, the Puranas, Mahabharata, everything, but still I'm feeling a lack. So Narada told him, you'll be complete if you write the Srimad Bhagavatam, which are the direct glories of Brajendranandan and Sri Krishna. So he did that, and he felt complete, and yet we have Krishnadas Kaviraj Goswami illuminating the Srimad Bhagavatam, which is Chaitanya Charitamrita. So Chaitanya Charitamrita is complete, yet we find Srila Rupa Goswami illuminating Srila Krishnadas Goswami. We find Narottam Das Thakur and Raghunath Das Goswami illuminating Rupa Goswami. We find Viswanath Chakrabarti Thakur like that. We find Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur illuminating Bhakti Vinod Thakur. Srila Prabhupada, he wasn't going against his guru or going above Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur to write so many books, even though his Guru Maharaj already wrote so many books. But he was illuminating the message of his guru and the whole Siddhic succession. And this is the meaning of real acharya. And similarly, by Srila Narayana Maharaj's words and books, we're actually seeing the real message and the real meaning of Srila Prabhupada. That he is actually the associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and his mission is the same as Mahaprabhu. That is to give Braj Bhakti to all the lucky divas of this world. So Srila Narayana Maharaj is actually our eldest godbrother, the senior most disciple of Srila Prabhupada, and perfectly lighting up his message. So I personally feel very fortunate to have his association, because as Madhavananda Prabhu just said, we feel, and he said that he feels Prabhupada's presence. My Hindi isn't that good, but I think that's what you said.
You were perfectly right.
With Srila Narayana Maharaj's presence. And I also felt that way for the last 5 years. We hear and we read in the Chaitanya Charitamrita that Guru is one. But unless one gets the mercy of a Diksha Guru, and he has a bona fide Diksha Guru, he cannot understand this very magical truth of the scriptures, how Guru is one. How by loving and following the dearmost servitor of the Guru that we already love and know is perfect, we develop much more love for the Guru that we already love. There's no competition, but one simply is transparent to the other. Unless one is on Prabhupada's level in mood and siddhanta, he cannot understand Prabhupada or explain Prabhupada. So, everything is in Prabhupada's books, but we find that they're under lock and key. Srila Narayana Maharaj gives the example of a treasure chest. Prabhupada's books are like a treasure chest. But we find there's a lock and key. By chanting and following, that lock is opened, and we get a treasure, but there's another treasure chest with a more greater treasure inside, and this goes deeper and deeper. And these deeper and deeper locks to greater and greater treasures of the meaning of the scriptures and revelation of the scriptures can only be opened by one who is on the same level as Srila Prabhupada. So we have personal realization of increasing our relationship with Srila Prabhupada by Srila Narayana Maharaj. And I know I'm already taking up too much time, but one more thing. Just as Srila Raghunath Das Goswami had a bona fide Diksha Guru, and that is Yadananda Acharya. Raghunath Das Goswami glorifies him that he is the dearmost devotee of Yadananda and Sri Krishna. And yet, he was helped by Yadananda Acharya to meet Srila Rupa Goswami, who he got his Diksha that he received from Yadananda Acharya. His Diksha was completed by Srila Rupa Goswami. No competition, but completed and enriched. And this is the function and duty of the Shiksha Guru, to complete the Diksha of the disciple, whether it's his own Diksha disciple or the disciple of the bona fide Diksha Guru. So it's taken us all many billions of births to come to this house of Madhavananda Prabhu, and we're all very, very lucky. Hare Krishna.
Our ISKCON, the Srimad Bhagavatam, and all other books, and we have seen all the painting which is painted by Yajurani Devi Dasi, who just, you know, mentioned a little thing about the Prabhupada Association. So it is very nice that it's how many paintings is to be?
Couple of hundred.
Almost all the ISKCON books, whatever you see the painting, is all done by her.
Now more than that.
More than that.
After that, you want.
बाल कृष्ण का पहले बनाया हम रहे साथ में रहने पर उन्होंने राधा और कृष्ण की एक ऐसी छवि प्रस्तुत की जो वेणु गीत है श्रीमद् भागवत में शायद यहाँ पर नहीं है और एक है उसके बाद तुम ये कहा बहुत ही सुंदर चित्र जिसमें जगत के सभी लोग कृष्ण की आराधना करते हैं और कृष्ण राधा जी की आराधना कर रहे हैं ये दिखलाया है कृष्ण उनके चरणों में मस्तक खनने जा रहे हैं और राधा जी मत हमारे तरफ में आओ हमारे चरणों को मत छुओ तो मंत्र और बाहर में काला है कृष्ण अपनी बांसुरी भी इतनी जो प्रिय है उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं और ललिता विशाखा उनको चमर और ब्रजन ढुला रही हैं रूप मंजरी प्रति सखियाँ उनकी सेवा कर रही हैं और कृष्ण को वो भी नहीं आने देती यह सब मेरे हृदय की बातें इनको मैंने कहा जैसे इसको जगत में प्रकाश करो और करीब करीब 5-6 महीने में उस चित्र को बनाया वो जगत में सबसे प्रसिद्ध इनका हुआ इसलिए उनका नाम विश्व में और बढ़ गया वेणु गीत कृष्ण वेणु बजा रहे हैं और गोपियां घरों में बैठी हुई मतवाली होकर के भाव विबुद्ध होकर के सुन रही हैं और कह रही हैं जैसे हम तो कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर सके मर करके हिरणी बनेंगी मर करके हम बादल मेघ बनेंगी जो कृष्ण की सेवा करेंगी इत्यादि सा प्रकार से तो उसी का उन्होंने भी चित्रण किया और चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का भी एक बहुत सुंदर चित्र उन्होंने कीर्तन कर रहे हैं चले जा रहे हैं द्वैताचार्य इत्यादि पीछे से उनके चल रहे हैं एक और भी बहुत सुंदर चित्र किया है मैं समझता हूँ कि और भी भजन के जो भाव जो रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी के हृदय में थे इनको बतलाने से उसको भी प्रस्तुत करें ये भजन में भी सहायक होता है महाप्रभु के संप्रदाय में जो आए हैं वो महाविष्णु की सेवा करने के लिए नहीं नारायण की सेवा करने के लिए नहीं द्वारकाधीश की भी सेवा करने के लिए भी नहीं मथुराधीश की भी सेवा करने के लिए नहीं बल्कि रूप गोस्वामी के भावों के अनुसार में राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए है नहीं तो वो उसी संप्रदाय में जाएंगे दूसरी जगह में जाएंगे स्वामी जी ने इसको उपदेशामृत नामक एक रूप गोस्वामी के ग्रंथ में नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत उसकी व्याख्या में लिखा है। हम लोग की जो रेगुलेटिव भक्ति है, रेगुलेटिव माने होता है वैदिक भक्ति, इसकी धारा रुद्ध होती है। रेगुलेटिव भक्ति की इसलिए कि हम लोग स्पॉन्टेनियस कृष्ण की जो भक्ति है, निरंतर बहने वाली प्रेममयी जो भक्ति है, ब्रज प्रेम की जो सरिता है, उसमें अवगाहन करने के लिए हम लोग आए हैं। प्रारंभ में रेगुलेटिव भक्ति को, वैदिक भक्ति को हम लोग आश्रय करते हैं, किंतु हमारा उद्देश्य उसी तक रह जाना नहीं है। नदी की धारा रुद्ध हो जाने पर नदी का पानी सड़ जाएगा, उसकी धारा चलनी चाहिए। तो भक्ति की धारा रुकती नहीं है, प्रेम का प्रवाह निरंतर सतत चलता रहा। इसलिए स्वामी जी आए थे। महाप्रभु जो चीज देने के लिए आए, वो ये भी वही चीज देने के लिए आए थे, उससे तनिक कम नहीं। रूप गोस्वामी नहीं होते, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं होते, महाप्रभु को कौन जानता है ये स्वयं कृष्ण ही राधा जी का भाव लेकर के आए। कृष्ण से भी महाप्रभु जी का वैशिष्ट अधिक है, ये कौन जानता है। तो ये महापुरुष लोग नहीं होते तो हम लोग कैसे जानते। इसलिए ये भी उसी चीज के लिए आए थे, उससे नीचे कुछ कम देने के लिए नहीं। जगत में कृष्ण नाम का जो प्रचार किया, हम जिसको देखते हैं, ये उनका महान कार्य उतना नहीं है। इससे भी महान कार्य है कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको देना। प्रेम कीर्तन माल नहीं आदमी करता है और वह कृष्ण के प्रति उनका प्रेम नहीं है, तो उस कीर्तन का मतलब क्या रहा। यदि वो धारा बंद नहीं, तो कीर्तन करते 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 हजारों लोग जो स्वामी जी के जाने के बाद में उनकी धारा रुद्ध हो गई, तो वो संन्यास भी छोड़ दिया। क्यों, ये भी एक प्रश्न है, क्यों छोड़ करके चले गए। इतनी सेवा किया, लाखों करोड़ रुपए ले आए, क्यों छोड़ दिया। क्योंकि धारा वो आगे नहीं बढ़ी, निराश होकर के नीचे गिर गए। जब तक प्रेम भक्ति का अनुभव नहीं होगा, यशोदा जी जैसा कृष्ण के प्रति वात्सल्य स्नेह, गोपियों का कृष्ण के प्रति यदि मधुर भाव है, उसमें रसास्वादन नाम करते हुए नहीं आएगा, तो वो छोड़ने के लिए बाध्य है, चले जाएंगे। इसलिए वो सब चले जा रहे हैं नीचे, कहते हैं कि अब वैदिक भक्ति के ऊपर में, वैदिक भक्ति भी तो नहीं। इसलिए प्रभु जी ने, इनके गुरु जी ने, हमारे गुरु भाई और शिक्षा गुरु, इनके द्वारा बहुत से काम करे हैं। इसकी समझना चाहिए, तब मैं अपना प्रवचन आरंभ करूंगा। इस्कोन कोई नई चीज नहीं है। इस्कोन नाम अंग्रेजी में एक नया नाम है, इसका नाम है विश्व वैष्णव राज्य सभा, जो ब्रह्मा से चली आ रही है धारा। नई धारा नहीं, नई होगी तो फिर उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। जिसका जन्म है ना, उसका मरण भी है। तो जो चीज नई आरंभ होगी तो उसका विनाश भी संभव है। तो यदि नई कौन चीज नई है, तो दो चार वर्षों में, एक 50 वर्षों में वो समाप्त हो जाएगी। स्वामी जी चीज के लिए नहीं आए थे, ये कृष्ण प्रेम की एक धारा है। नाम थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, कोई भी बात नहीं। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा इस जगत में स्थापित है ये। रूप गोस्वामी इत्यादि के समय में, चैतन्य महाप्रभु के बाद में, जी गोस्वामी ने विश्व वैष्णव राजसभा की स्थापना की। एक धारा होनी चाहिए, विश्व वैष्णव राजसभा, जो कृष्ण प्रेम को देने वाली है। उसका मूल उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को देना, जो ब्रह्मा करते आए हैं, नारद जी करते आए हैं, वेद व्यास ने किया भी, जो बतलाया वेद व्यास समस्त कुछ देने के बाद भी सुखी नहीं रहे। क्यों, ब्रजवासियों जैसा प्रेम की बात नहीं लिखी। कृष्ण भी किसी के चरण में गिर सकते हैं, किसी की आराधना कर सकते हैं, कोई उनको बांध सकता है, पहले भागवत के बाद पहले किसी भी शास्त्र में नहीं था। अपने प्रेम के द्वारा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है जो कृष्ण सर्वशक्तिमान है, उनको अपने प्रेम के रज्जु से उसको बांध सकती है कोई, ये गोपियां बांध सकती हैं, यशोदा मैया बांध सकती हैं, उनसे भी अधिक राधा इत्यादि गोपियां उनको बांध देती हैं, उनको रस्सी की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने प्रेम रूपी स्नेह के डोर से उनको ऐसे बांध देती है कि कष्ट मत नहीं कर सकते। ये धारा है प्रेम देने के लिए, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस ये जो धारा है उसका पहला नाम कृष्ण प्रेम देने वाली धारा संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। उसी को जी गोस्वामी ने उसका नाम रखते हुए भी उसका नाम रखा विश्व वैष्णव। उसके बाद में ये चलती आई, आते आते उसकी एक शाखा हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के योग्य पात्र शिष्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी जी की यहां पर है, उसकी एक शाखा प्रशाखा एक डाल और सारे विश्व को डुबा दिया। देना चाहते थे कृष्ण प्रेम, कुछ कुछ लोगों को दिया भी, किंतु जंगल काटने में समय आया। एक ड्रीम कैन बी मेरी, ये जंगल है, ऐसे विचार। मुक्ति की कामना, देवताओं की उपासना, उसके द्वारा संसारी सब लाभ होता, उसमें संसारिक सुख और फिर आदमी मर जाएगा खत्म, उसमें कोई सुख नहीं है। हम भगवान के पार्षद हैं, उनके अंश हैं, जब तक भगवान की सेवा को प्राप्त नहीं करते तब तक सुखी नहीं रह सकते। इसलिए सभी आचार्यों ने इस काम को किया है, स्वामी जी ने यही काम किया, किंतु थोड़ा सा जंगल इधर में अधिक, उसको काटने में समय लग गया, किंतु अपने ग्रंथों में उभर करके रखा। जब ये हमारा बेटा अभी 2 वर्ष का है, 1 वर्ष का है, जब ये प्रौढ़ मेच्योर हो जाएंगे तो हमारी संपत्ति के अधिकारी बने, इसलिए ग्रंथों में रख दिया। कोई यदि कहे जैसे उनके ग्रंथ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सब कुछ तो भर दिया, अच्छा तो ब्यास जी ने भी तो भर दिया था, तो फिर और हमारे रूप गोस्वामी क्यों ग्रंथ लिखा? यदि रूप गोस्वामी ने सब कुछ दे दिया था तो जी गोस्वामी ने इतना ग्रंथ क्यों लिखा? यदि जी गोस्वामी ने सब कुछ दे दिया, उसके अंदर में है सभी कुछ ठीक है। उसके बाद में हमारे भक्त विनोद ठाकुर ने सैकड़ों ग्रंथ किस लिए लिखे, और जब इन लोगों ने लिखा तो स्वामी जी ने क्यों लिखा, और स्वामी जी के जाने के बाद अब क्यों ग्रंथ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अब होंगे नहीं ग्रंथ, होंगे कुछ न कुछ उच्छिष्ट रख जाते हैं महात्मा लोग, उसको प्रकाश करने के लिए। प्रेम कैसा नित्य नवीन है, कितना वर्णन करेंगे प्रेम की, लाख वर्णन करने पर भी पूरा नहीं होता। कृष्ण का चरित्र नव नवायमान है, नए से नए होता जाता। एक गोपी ने कृष्ण को देखा, वो गोपी राधा जी कहें कि ये कौन है जो आ रहा है? ललिता जी ने कहा तो नहीं जानती, तो मैंने कभी देखा ही नहीं, देखा नहीं, अरे अभी तो उसकी गोदी से उतर करके आ रही है और उसको देखा नहीं, तो मैंने कभी नहीं देखा, देखते ही रहते। ये नित्य नवायमान चीज है ना, तो प्रेम को भी तो वर्णन करना भी तो नित्य नवाय नवायमान होगा, नए नए रूप से, कभी पुराना नहीं होता ये चीज, इसलिए इन चीजों को समझना चाहिए। इसलिए भक्ति केवल इस्कोन नामक जो संस्था है उसी में ही नहीं है, कोई यदि समझे तो ये गलत है। इसी का प्रतिरोध करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी आए और बोले, जो लोग ये समझते हैं कि भारतवर्ष में हम ब्राह्मण कुल में आए हैं और हम ब्राह्मण हैं, यह गलत है। ब्राह्मण वंश में होकर के ब्राह्मण का काम नहीं करते, ब्रह्म की अनुभूति नहीं है, कृष्ण का भजन नहीं करते, तो ब्राह्मण शूद्र और चमार से भी गया बीता है, समझ रहे हैं इस चीज को? ब्राह्मण कुल में आने से नहीं होगा। वृंदावन में गोस्वामी लोग हैं, नवदीप में गोस्वामी लोग हैं, कालना में गोस्वामी लोग हैं, जो गोस्वामियों के वंश में आए हैं, केवल वही भजन करेंगे और दूसरा नहीं करेगा, सब नीच है ऐसा मत समझो। प्रभुपाद ने इसका विरोध किया है,
जो लोग गोस्वामियों के वंश में होने पर भी भजन नहीं करते और भजन की अनुभूति जिनमें नहीं है, कृष्ण प्रेम नहीं है, तो एकदम गया पिता गधे से भी अधिक है। और दूसरे कुल में भी भगवान का हरिदास ठाकुर जैसे लोग भगवान का भजन करते हैं तो ये लोग कैसे हैं, सर्वोत्तम है। विदुर शूद्र जाति के, नारद जी शूद्र जाति में, व्यास जी कौन कुल में है, अंत्यज है। क्यों? पराशर जैसे ऋषि एक किसी की लड़की के साथ में उनको कुमारी अवस्था में पैदा, ये कौन सी जाति होगी, खबरदार किंतु ऐसा मत सोचो। वैष्णव की कोई जाति नहीं होती, भक्तों की कोई जाति नहीं होती, कहीं से भी उत्पन्न होकर के संसार में सबसे बड़े रह सकते हैं। इसलिए इसी संस्था में यदि कोई संस्था में भगवान का भजन न करे और ये सोचे कि मैं सबसे बड़ा हूं तो यह सबसे बड़ी गलती है, इसीलिए अधोपतन। भक्ति कंट्रोल की चीज नहीं है, यह प्रेम की चीज है। महाप्रभु जी प्रेम से हा कृष्ण कहा, कृष्ण कहा, हा प्रजंद नंदन कहते हुए चले जा रहे हैं और मृग पशु पक्षी सिंह बाघ भालू उनके पीछे पीछे कृष्ण कृष्ण कहते हुए चल रहे हैं। ये तो प्रेम है ना, कहीं द्वेष उसमें नहीं रहता, किसी के प्रति निंदा का भाव नहीं रहता, ये प्रेम है। प्रेम से सर्वस्व जगत को जीता जा सकता है। महाप्रभु यही प्रेम देने के लिए आए थे, स्वामी जी को यही प्रेम देने के लिए थे, कोई भी अंतर नहीं। किंतु वह प्रेम यदि किसी में नहीं है और कहता है मैं उनका बेटा हूं, जैसे स्वामी जी के लड़के कह रहे थे कि इनके समस्त संपत्ति का हम लोग उत्तराधिकारी हैं क्योंकि मैं उनका बेटा हूं, तो वैसे कोई उनसे दीक्षा लेकर के और भजन नहीं करता है, विषयों में फंसा रहता है और वो कहे जैसे मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, यह गलत बात है। कोई भी भगवान का भजन करने वाला हो, हरि का भजन जो करता है, हरि को भजे सो हरि जन होई। हरि का भजन करने वाला भगवान का प्यारा है, किसी वंश और कुल का ये उत्तराधिकार की भक्ति चीज नहीं है। जैसे इसी को ही हो, इसी वंश में ही भक्ति होती चली जाएगी, तो फिर जब वंशों का वंश क्यों हो गया, कृष्ण कुल में तो आए थे। प्रहलाद महाराज जी तो असुर बालक होकर के आए, तो उनको भक्ति जगत के पूज्य कैसे बन गए। अरे सुग्रीव जी तो और हनुमान जी तो बंदर और भालू, इनको भक्ति कैसे मिल गई। अरे सबरी तो कहां जहन्नम की जाति, वन जंगल में भीलनी जाति, और राम सब ब्राह्मणों को छोड़कर के ब्रह्मऋषियों को छोड़कर के उसके घर में पधार कर उसके जूठे देर को खाया। क्यों क्यों खाया, जहां पर प्रेम है वहीं पर, जहां प्रेम नहीं है उसका कुछ भी ग्रहण नहीं करते, चाहे वो जिस कुल में आया हो। कुल से मतलब नहीं है भक्ति का, किसी संप्रदाय से कोई खास मतलब नहीं है। यदि संप्रदाय में रहते उसके आचार विचार को नहीं पालन करते हैं तो फिर मतलब क्या था। संप्रदाय का तात्पर्य कि उस विचार को हम ग्रहण करते हैं, जहां ये नहीं है वहां पर भक्ति का भक्ति नहीं है, और जहां पर ये चीजें हैं कहीं भी ये हो सकता है, वैष्णवों की कृपा गुरु की कृपा से ये हो सकता है। अब ये बतला रही थी सनातन गोस्वामी जी के दीक्षा गुरु कौन है, कोई बतला सकता है कौन है दीक्षा गुरु। कहीं दिखा ही नहीं। हरिदास ठाकुर के दीक्षा गुरु कौन थे जो महाप्रभु उनको नामाचार्य बना दिया, नहीं। इसलिए जिनके विचारों को ग्रहण करके मनुष्य भगवान के प्रेम को पाता है वही गुरु यथार्थ है। अरसमन जिनके विचारों को आदर्शों को ग्रहण करके आदमी प्रेरणा प्राप्त होकर के भगवान की तरफ में अग्रसर हो जाता है वही यथार्थ उसका गुरु है। हमारे रघुनाथ ये कृष्णदास कविराज जी का गुरु कौन था, कहीं लिखा है। उन्होंने पहले ही प्रणाम किया एक भय गुरु जी सिखा गुरु जी हमार, ये छह हमारे शिक्षा गुरु हैं। कौन? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, गुरु का नाम लिखा ठीक, रूप गोस्वामी उनके गुरु हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी उनके गुरु हैं। रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चैतामृत कहे कृष्ण दास, उनके आदर्शों को लेकर के ग्रहण किया और वैसा ही भजन किया। वही गुरु है जिसके विचारों को, हृदय के भावों को लेकर के हम भजन करते हैं, अनुप्राणित होते हैं, हमको शिक्षा मिलती है और हृदय से उसको ग्रहण कर देते हैं, वही यथार्थ गुरु है। और जो शिष्य होने पर भी मंत्र ले लिया और उनसे कोई संबंध नहीं, भजन नहीं करता, कुछ नहीं करता, विषय में फंसा, रुपये में आसक्त, माया मोह में आसक्त, वो गुरु कैसे होगा? वो शिष्य नहीं, शिष्य वही है जिनके भावों को ग्रहण करता है। यही शिष्य दो प्रकार का, एक दीक्षा और एक शिक्षा, दोनों बराबर। कहीं कहीं शिक्षा गुरु उन्नत, कहीं कहीं दीक्षा गुरु उन्नत, भावों के ऊपर में है। जैसे हमारे गुरु हैं ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पार्षद भक्ति पर ज्ञान के स्वर्ण, और उसको स्वामी को हमने शिक्षा गुरु माना, कृष्ण को शिक्षा गुरु माना, चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा गुरु माना, तो शिक्षा गुरु बढ़ा हुआ ना दीक्षा गुरु? आ रहा है समझ में? हमने शिक्षा गुरु बनाया है कृष्ण को, राधा जी को शिक्षा गुरु बनाया, और शिक्षा गुरु बनाया रूप गोस्वामी को, और हमने गुरु मंत्र दिया दीक्षा गुरु से। और बतलाइए तो कौन श्रेष्ठ है, कृष्ण श्रेष्ठ है कि हमारे गुरु जी है? किंतु हम इनके प्रति इसीलिए हैं, हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारा चोटी पकड़ करके बहिर्मुख जगत में घूम रहा था, कृष्ण के चरणों का रास्ता स्वागत कराया, इसलिए हम कितनी ऋणी रहेंगे। इसलिए भगवान और शिक्षा गुरु भी रहने पर हम अपने दीक्षा गुरु को प्रणाम करके तब फिर उनको भरेंगे। किंतु हम जानते हैं कि दीक्षा गुरु से भी वो रूप गोस्वामी बहुत, हमारे गुरु जी के 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 गुरु रूप गोस्वामी है, इस रूप में हम समझेंगे। यह समझना अपराध नहीं है। यदि भक्ति का किसी से संबंध नहीं है, चाहे जो कोई हो, खास कृष्ण का बेटा भी है, महाप्रभु का कोई खास आदमी भी है, कोई भी भक्ति से संबंध यदि है तो उसके साथ में संबंध है। ये विचार भक्ति का है। इसलिए प्रभुपाद के आने के बाद में जब प्रचार आरंभ किया, उसे जान से मारने के लिए बहुत से षड्यंत्र किए गए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती को नवदीप ने उनसे जान से मारने के लिए दी, जैसे हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, वहां रोजी रोटी का प्रश्न है। वैष्णव का कोई यदि दूसरा विरोध करता है तो ये समय की रोटी रोजी देखता है वो, ये हमारे जो पाने वाला जो रुपया था वो अब उनके पास में चला जाएगा, हमको कोई नहीं मारेगा। ये बड़ी भारी एक समस्या है, ये भक्ति का विचार नहीं है। तो आज हम कुछ भक्ति के संबंध में दो चार बातें बतलाना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु के समय में रूप और सनातन जी हुए थे, अभी छोटे से बच्चे थे तो जहां रहते थे, एक समय की बात है कि उसन साहब आता अपने एक मीनार, जैसे कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, यहां पर भी टावर है, ऐसे वो बनवा रहा था। वो बनाने वाला मिस्त्री बड़ा कुशल था कारीगर, उन्होंने उसको आदेश दिया कि ऐसा बनाओ टावर कि इसे अच्छा कोई बना न सके, अच्छा ठीक है, वो बनाना आरम्भ किया, टावर बन गया। एक दिन ऊपर में चढ़ा बादशाह और उस मिस्त्री को भी ले गया। उससे कहा, भाई तुमने तो टावर तो बहुत ऊंचा बहुत अच्छा बनाया, यहाँ से पूरा दिल्ली दिखाई पड़ता है। तो ये हजूर, मैं तो इसे भी अच्छा बना सकता था। अच्छा, तुम इतना अच्छा कारीगर है, मैं यहाँ के इसका हाथ काट लो और इसको ये तुम्ब से मीनार से इसको फेंक दो नीचे, ये दूसरा कोई बना ही नहीं सके, ये भी नहीं दूसरा बना सके। बस उसको हाथ कटवा दिए और वहीं से ऊपर से फेंक दिया और वो मर गया। और उस समय बादशाह क्रोधित था, उसने एक आदमी को बुलाया अपने प्रधान किसी कार्यकर्ता को, जाओ जल्दी से बुला करके लाओ। वो सुन करके थरथर कांपता हुआ वहां से चला। क्या करें, कहां से, क्या किसको बुलाना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आया। वो नगर छोड़कर के भाग गया और जहां पर रूप सनातन थे उसी नगर में चला गया प्राण बचाने के लिए। ये हमको तो पता नहीं। रूप सनातन जी उस समय छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बुला करके एक दिन देखा, बड़े दुखी हैं। भाई किस लिए तुम लोग दुखी है, क्या बात है, क्या कहें महाराज हजूर, तुम लोग छोटे बच्चे हो। बादशाह ने हमको कहा कि जल्दी बुला लाओ, और यदि बुला करके नहीं किसी को ले जाता है जिसको बादशाह चाहता है तो हमारा गला काट देगा, इसलिए डर के मारे हम भाग करके शरण लेकर के यहाँ पर छिपे हुए हैं। बादशाह उस समय क्या कर रहा था, उसी मीनार पर खड़ा था, क्या कर रहा था, तो मीनार को देख रहा था और जो बनाने वाला था उसको उसने मरवा दिया। बस मीनार का काम पूरा हो गया, थोड़ा सा बाकी है। और जाओ यहाँ पर बहुत मिस्त्री अच्छे अच्छे हैं, यहाँ से अच्छे 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 से मिस्त्रियों को लेकर के जाओ और उस काम को कंप्लीट करा देना। यहाँ से अच्छे अच्छे सुन करके दो चार मिस्त्री ले गया और वहां पर बादशाह के पास में पहुंचा। हजूर मैं बुला करके ले आया। तो बादशाह हंसने लगा, तुम कैसे लाया, क्या ले आया। तो मैं राजमिस्त्री को जो काम करने वाले हैं ईंट इत्यादि के काम करने वाले। तो खुश हो गया था जी, तू कैसे लाया। तो दो लड़के वहां हैं उस जगह में, उन लोगों ने ऐसा हमको बतलाया जैसे ये बादशाह यही चाहता था, वो दोनों को किसी प्रकार से लाया जाए। बस अपने आदमियों को भेज करके इन दोनों को ले आ करके राजमंत्री प्रधानमंत्री उनको प्राइवेट सेक्रेटरी उनको नियुक्त किया। अंत में हुआ क्या, महाप्रभु जबकि वृंदावन जा रहे हैं संन्यास लेने के पश्चात, तो जाना चाहिए था जिस रास्ते से नहीं जाकर के उस रास्ते से आए और वहां पर मिले। उनके साथ में हजारों लाखों आदमी लग गए, भक्त लोग कोई साथ नहीं छोड़े, वृंदावन जाएंगे महाप्रभु जी के साथ। जब वहां पहुंचे तो काफी भीड़। राजा ने हुक्म दिया, हुसैन बादशाह ने सनातन और रूप जी को, जाकर के पता लगाओ कि ये किस लिए आदमी आ रहा है और इसके पीछे इतने आदमी क्यों आ रहे हैं, हमारा राज्य तो नहीं दखल करने आ रहा है या क्या बात है। लोगों ने समझा कि नहीं वो ऐसा नहीं, ये वृंदावन जा रहे हैं और इनके साथ में भक्त लोग जा रहे हैं, अपना अपना खाते हैं, इनके साथ में जा रहे हैं, वृंदावन की शोभा देखेंगे, कृष्ण का भजन करेंगे। रात में इनसे मिले रूप और सनातन, और जी गोस्वामी छोटा सा बच्चा था उनके चरणों में दे दिया। सनातन गोस्वामी जी बोले, आज हमारा जीवन सफल हो गया आपसे मिलकर, आप हमें दर्शन देने के लिए इस रास्ते से आए, नहीं तो आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, आप वृंदावन जब दर्शन करने के लिए, ये वृंदावन दर्शन करने की परिपाटी नहीं है, ये पद्धति नहीं है, जो लाखों लोगों को साथ में लेकर के जा रहे हैं, इनकी व्यवस्था नहीं तो आपकी सारी चिंताएं चली जाएंगी, आप भगवान कृष्ण के लीला चिंतन कब करेंगे, समझ रहे हैं। इतने लोगों की हमने मठ किया, 10, 15, 20, 50, 100 मठ किया, अच्छा उसकी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। एक एक मठ में हमने 500 गौवे रख दी, काफी संपत्ति है, बाग बगीचे हैं, उसमें स्त्री पुरुष रहते हैं, कभी गड़बड़ करते हैं, कभी उसकी स्त्री को भगा ले जाता है, वो उसकी स्त्री को वो भगा ले जाता है, कभी कुछ, कभी पैसे की कमी, इतनी गऊओं का पालन कैसे हो, कभी गैया मरने लगती हैं, कभी कुछ। तो दिन भर एक आदमी स्वामी जी इसी की चिंता करते रहे, या कहां से पैसा आएगा, लाखों रुपया इसकी व्यवस्था की जरूरत कहां से आएगा, ये तो राजा का काम, इसकी व्यवस्था में तो गड़बड़ हो जाएगा, आप इधर चिंता कीजिए, आने दीजिए उन लोग। तो आदमी भजन क्या करेगा, ये आदमी कहां पानी पिएंगे, इनकी छाया कहां होगी, रसोई कहां से होगी, कैसे रहेंगे। अपराध और ये किया, स्वामी जी का पहला भाग, ये दूसरा भाग। उनका ही वो क्या कहते हैं पूरक। अच्छा, तो आप लोगों को भी मैं भेजूंगा, अभी जो कुछ दिया लाया था वो। तो सनातन गोस्वामी जी बोला, जैसे इतने लोगों को जाएंगे तो उनकी चिंता करेंगे ना, कृष्ण की चिंता करेंगे, एक दो आदमी बेसी से बेसी, और भी अपने समजातीय भाव का हो, जो भावों को और वृद्धि करे। और यदि वहां पर दो आदमी लड़ने लगे तो महाप्रभु जी लड़ाई रोकेंगे ना, कृष्ण दर्शन का भाव देगा। और इतने लोग खाएंगे कहां, रहेंगे कहां, क्या करेंगे, यही चिंता। इसलिए यहां से लौट जाइए और अकेले जाइए, महाप्रभु जाइए, तो बड़ी अच्छी शिक्षा। मैं सचमुच में ये सोच रहा था। उन्होंने कहा जी नहीं, आप हम पर दोनों पर कृपा करने के लिए आए थे, बहाना इस तरह से बनाया आपने, तुम लोग बहुत जल्दी से ये सब छोड़ करके हमारे पास आ जाओ, वृंदावन में तुमको हम स्थान देंगे, जहां पर कृष्ण की लीलाएं हुई थी, रस रस बरस रहा था वहां, वहां से तुम लोग मनुष्य जन्म को बर्बाद मत करो विषय के भोगों में। बस उन्होंने निश्चित कर लिया, अब नहीं। महाप्रभु जी चले आए और इसके बाद में रूप सनातन जी ने, पहले रूप गोस्वामी ने संसार छोड़ा, छोड़ करके और चले आए घर, जो कुछ कमाया था उसका आधा सब लोगों को, ब्राह्मण को, इसको इसको दे दिया, जो आधा रह गया उसमें आधा में आधा कर दिया, और अपने पारिवारिक जनों में उसको बांट दिया, और जो थोड़ा सा और रह गया उसका भी आधा कर दिया, आधे में जीव गोस्वामी की शिक्षा इत्यादि के लिए परिवार वर्ग को दे दिया, और 10,000 स्वर्ण मुद्रा उनके पास में केवल रह गया, और बाकी सब बांट दिया। उसको लेकर के जहां पर कि वो प्रधानमंत्री हैं वहां पर आए और उनको दे दिया, यदि रूप सनातन गोस्वामी को किसी रुपये की चिंता होगी तो इनसे इनकी सहायता, और अपने आप वृंदावन में चले आए। सनातन गोस्वामी जी अपराध काज हो नहीं, नवदीप के ब्राह्मण और गुरु जो बहुत उच्च कोटि के जो वैष्णव थे उनको बुला करके भागवत श्रवण करते थे। भागवत का क्लास होता है, जैसे आपके घर में क्लास होता है, भागवत का शास्त्रों का क्लास होता है, ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग, रसिक लोग, तत्वज्ञ लोग उसकी सभा में जाते थे और सबका सम्मान करते थे। ये आने जाने का खर्चा तर्चा जो कुछ होता था, सारी व्यवस्थाओं को, उनके भरण पोषण इत्यादि का सारी व्यवस्थाएं वो करते थे सनातन गोस्वामी, और वहां पर निश्चिंत होकर के भागवत। 10 दिन हो गया, गए नहीं राजा के दरबार में, कोई व्यवस्था नहीं की। राजा ने खबर दिया सनातन गोस्वामी को, जो कल जाओ ना, तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा। तो कोई आदमी आया तो उन्होंने खबर दिया, भाई कह दो जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं जा नहीं सकता। तो गया उनसे कहा बादशाह से, जो उनकी कहते हैं तबीयत खराब है कि नहीं, मैं तो देख रहा था कि वहां पर 10-20 आदमी थे, बड़े बड़े पंडित पगड़ी बंधे हुए, और वैष्णव लोग थे टीका लगाए हुए, गले में तुलसी की माला, और सभी लोग रो रहे हैं, कृष्ण की कथा की चर्चा हो रही है। अच्छा, वो वेंकटेश वो आ गया, सनातन तुम मेरा छोटा भैया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम बीमार कुछ नहीं, राज्य का हमारा चौपट हो गया, प्रबंध हो नहीं रहा, और तुम इसे उदासीन होकर के घर में भागवत बांच रहा है और पढ़ा रहा है, तुम हमारे उस पर प्रंचित हो, देखो हम संपूर्ण से तुम पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा जी महाराज मैं सच बात बतलाऊं, अब हमारा इसमें काम में हमारा रुचि नहीं, अब मैं कर नहीं सकता, आप दूसरा कोई प्रधानमंत्री और दूसरी कोई खोज दीजिए। बहुत जीत किया। बसा ने कहा यदि आप हमारी बात ऐसे नहीं मानती हैं तो आपको मानना पड़ेगा दूसरे रूप में, आपको जेल में बंद कर दूंगा और आपको बहुत शास्ति दूंगा, दंड दूंगा यदि हमारा राज्य नहीं देखेंगे। अब आपकी जैसी उन्होंने सोचा, राजा मोरे प्रीति करे से मोर बंधन, स्त्री मोरे ये प्रीति करे से मोर बंधन, स्वामी मरे प्रीति करे से मोर बंधन, पुत्र मरे प्रीति करे से मोर बंधन। आ रहा है समझ में? राजा मोरे प्रीति करे से मोर बंधन, राजा मुझे जो प्यार कर रहा है ये प्यार हमारे लिए नहीं कर रहा है, उसके लिए। वो नहीं देखता कि इसका जीवन बर्बाद हो रहा है कि जीवन सुखी होगा कि कैसे, वो तो अपना काम निकालने के लिए हमसे प्यार कर रहा है। स्त्री मुझे प्यार करती है, ठीक है करती है, वो प्यार नहीं मोह है, आसक्ति है। यदि कृष्ण के लिए प्यार करती, जैसे गोपी लोग गोप लोग अपने गोपियों को प्यार करते थे, ये कृष्ण की प्यारी है। पांडव द्रौपदी को प्यार करते हैं किस लिए? अरे कृष्ण की प्यारी सहेली सखी है इसलिए। और पांडव लोग द्रौपदी को किस लिए, द्रौपदी पांडवों को किस लिए प्यार करती हैं? अरे अर्जुन के रथ को हांकते हैं, कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण ने अपनी बहन को भी इनके साथ में शादी कर दिया है, इतने प्रेमी लोग हैं, इसलिए कृष्ण के प्रेम को लक्ष्य करके उनका प्रेम है, हमारा जैसा नहीं। सनातन गोस्वामी ये देख रहे हैं, राजा हमारा परमार्थ नहीं देखता है, हमारा परमार्थ जीवन का नष्ट हो रहा है, मरी से जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारा परमार्थ नहीं कर सकेंगे। यदि हम बिल्ली कुत्ते सुअर गधे कुकर होकर के आएंगे तो परमार्थ होगा? परमार्थ के लिए हम क्या करते हैं? वर्षल में परमार्थ के लिए क्या करते हैं? नहीं करते। जिस प्रभु ने हमें जन्म दिया, जिस प्रभु के हम अंश,